मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 12 सितंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सभी के साथ ही मैं स्वागत करता हूं दो नौजवान उन साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अभिषेक सैनी जो जयपुर से हैं, और दूसरे साथी हैं मोहम्मद उस्मान आरिफ जो देहरादून उत्तराखंड से हैं। तो अभिषेक और मोहम्मद उस्मान, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, स्वागत के बाद अब मैं बधाई देना चाहूंगा अयोध्या प्रसाद को। आप सबकी ओर से भी, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, अपनी ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, जिन्होंने यूपीएससी के सीएपीएफ एग्जाम 2016 में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने लिखा है कि इसका बहुत बड़ा श्रेय डेली ऑडियो गाइडेंस को और जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड की जाती थी, की जा रही हैं, उनको है। तो अयोध्या, इसके लिए बहुत बहुत हम सब की तरफ से आपको बधाई और एक बहुत ही बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी। मित्रों, एक छोटी सी सूचना है, और सूचना यह है कि कल गजेटेड हॉलीडे है, और जिस दिन गजेटेड हॉलीडे होता है उस दिन डेली ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो कल डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं आएगा, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स आपको पढ़ने को वेबसाइट पर मिलेंगी। जो आप मिस करेंगे वो सिर्फ केवल ऑडियो गाइडेंस भर है। तो मित्रों, अब इस सूचना के बाद एक और छोटी सी दूसरी सूचना कह लीजिए, और वो ये कि मैंने आप लोगों से जो एक अपने डिसीजन पर राय मांगी थी कि क्या हम लोग कभी कभी डेली ऑडियो गाइडेंस में रेडियो न्यूज़ और पेपर क्लिपिंग्स की बात से अलग हट करके जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं या और कुछ जो कह लीजिए कि जो आपके सिविल सर्विस की प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं उन पर बातचीत कर सकते हैं, करें तो कैसा रहेगा। और उसके नमूने के तौर पर मैंने एक दिन इसके लिए आपको उसी रूप में डेली ऑडियो गाइडेंस प्रस्तुत भी किया था। इस पर आप लोगों की जो बहुत ही उत्साहजनक प्रतिक्रिया मुझे मिली है उसे पढ़कर मुझे बेहद खुशी हुई है। जितने भी प्रतिक्रियाएं मेरे पास आई हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि एक भी स्टूडेंट ने इसका विरोध किया हो। अगर हो सकता है कि किसी के मन में अगर विरोध की भावना भी हो तो उन्होंने मुझे सूचित करना ठीक न समझा हो। खैर, अब मैं तो मित्रों मन की बात तो जान नहीं सकता, तो जो फीडबैक मुझे मिला है उसके आधार पर अब मैं यही निर्णय ले रहा हूं आप सबकी सहमति के साथ कि अब हम लोग कभी कभी बीच में जब भी ऐसे मौके मिलेंगे उस समय आपके रेडियो न्यूज और अखबारों की क्लिपिंग्स से अलग हटकर कुछ दूसरे मुद्दों पर भी जो बड़ी जरूरी होंगी उन पर बात कर लिया करेंगे। तो मित्रों, अब मैं आता हूं कल के एआईआर न्यूज पर। दोस्तों, कल के एआईआर न्यूज में दो तीन इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो सच पूछे तो न्यूज के रूप में तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन व्यूज के रूप में डेफिनेटली वो काफी इम्पॉर्टेंट है। मैं उन्हीं को लेकर के थोड़ी बहुत चर्चा आज आपसे करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, पहली खबर आपने कश्मीर के ऊपर सुनी, और कश्मीर पर पिछले दो तीन महीनों से आप देख रहे हैं कि लगातार आपको खबरें सुनने को मिल रही हैं। मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ एक है, छोटा सा, कि अभी तक जो कुछ भी कश्मीर की समस्या को सुलझाने की कोशिश की गई है भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, दोनों मिलकर के जो कुछ भी अभी तक कर पाए हैं और कर रहे हैं, क्या आप उन सारी की सारी कोशिशों को सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत करने का मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सी चीजें की जा रही हैं, राइट। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि देश का जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल था वह कश्मीर गया, वहां बातचीत हुई, लेकिन जो अलगाववादी जो समूह हैं, गुट हैं, उन लोगों ने एक तरीके से सर्वदलीय को बड़े अपमानजनक तरीके से ही लौटा दिया कि घर गए तो दरवाजा नहीं खोला गया, उन लोगों ने बातचीत नहीं की। ये एक घटना हुई। दूसरा, फिर आप देख रहे हैं कि सरकार अपनी थोड़ी सी नीतियों में बदलाव कर रही है और नीतियों के तहत आपने देखा कि अब एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपके उनके उन प्रदेशों का नाम लिया जहां खासकर मानव अधिकारों का बहुत जबरदस्त उल्लंघन हो रहा है, जिसमें बलूचिस्तान है, पाक अधिकृत कश्मीर का भी उन्होंने नाम लिया है। तो इस तरीके से पाकिस्तान पर एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। मतलब अभी जो एक भारत सॉफ्ट व्यू लेकर के चल रहा था, भारत को लगता था कि दोस्ताना तरीके से बातचीत के माध्यम से इस समस्या का शायद हल निकल जाए, लेकिन जब भारत ने देखा कि अब उसका धैर्य चूक रहा है तो अब उसने एक तरीके से थोड़ा सा एक सख्त कदम, या कह लीजिए कठोर शब्दों में वार्निंग देनी शुरू की है। यह उसका एक दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष आपने एक और भी मार्क किया होगा मित्रों, कि इस बीच के अगर आप अखबारों पर थोड़ा सा गौर करेंगे, खासकर कश्मीर से संबंधित जो खबरें हैं, आप देख रहे हैं कि जो वहां उग्रवादी नेता हैं जो कश्मीर के बारे में बात करना नहीं चाह रहे हैं, उनसे संबंधित काफी चीजें प्रेस में आई हैं कि कैसे ये बड़ा वैभवशाली जीवन जीते हैं, कैसे इनके अपने जो बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी कर रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, कम से कम कश्मीर में तो नहीं रह रहे हैं, कैसे इनके भी जो इनका जो परिवार है, सच पूछे तो जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम से ग्रस्त कश्मीर है वहां न रह करके बाहर रह रहा है। इसी से जुड़ी आपने एक बात और भी खबर पढ़ी कि सरकार इस पर विचार कर रही है कि ये जो अलगाववादी जो नेता हैं इनकी सुरक्षा पर या दूसरी चीजों पर जो भी खर्च हो रहा है उसको वो एक बार फिर से रिव्यू करे और रिव्यू करने के बाद उसके ऊपर डिसीजन ले। ये तीसरी तरह की खबरें हैं। अभी ये तीन तरह की खबरें ज्यादा प्रोमिनेंटली आ रही हैं। मैंने जो बात कही आपसे कि अब इन खबरों को आधार बनाकर, इसमें और भी छुटपुट दूसरी खबरें आप ले लीजिए जो कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, इनको आधार बनाकर क्या आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं या एक अच्छा उत्तर इस तरह का तैयार कर सकते हैं जिसमें कश्मीर के प्रति भारत सरकार की अब जो वर्तमान नीति है, कश्मीर समस्या के प्रति उसको किस तरीके से आप सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत करेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका आपके पास हो सकता है? कुछ छुटपुट जो विशेष जो न्यूज हो सकती हैं वो मैंने आपको बताई है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें और थोड़ा सा काम भी करें कि देखें कि आप क्या निकाल सकते हैं, इस बारे में क्या बता सकते हैं। एक अच्छा एक्सरसाइज होगा। मित्रों, मेरा गला काफी कुछ ठीक हो गया है, लेकिन आज पता नहीं क्यों ये डेली ऑडियो गाइडेंस रिकॉर्ड करते समय ये कुछ ज्यादा ही तंग कर रहा है, अदरवाइज गला लगभग कल के बाद से काफी ठीक है। मित्रों, जो दूसरी जो बड़ी खबर है, मैं बड़ी ही खबर कहूंगा, वो ये कि आपने दूसरी न्यूज के रूप में ही ये बात सुनी कि केंद्र सरकार ने अब ये फैसला किया है कि राज्यों को जो धन देती है केंद्र सरकार, आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि राज्यों में केंद्र प्रायोजित स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत से प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, उन प्रोग्राम्स के लिए केंद्र सरकार धन देती है, कुछ के लिए 100% देती है, कुछ के लिए 75% देती है, 25% स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, कुछ के लिए रेशियो 50-50% का रहता है, वो योजनाओं के आधार पर अलग अलग रेशियो दोनों का होता है। तो एक जो न्यूज थी वो हालांकि बड़ी छोटी सी थी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही मूल्यवान न्यूज थी, और वो ये कि केंद्र ने अब उनकी जो एक फ्लेक्सी निधि होती है जिस पर वो एक लिबर्टी ले सकते हैं खर्च करने के लिए, उसका परसेंटेज बढ़ाने की बात कही है कि उसमें उन्होंने एक लचीलापन प्रोवाइड किया है। देखिए इसके बारे में आपको थोड़ी सी एक दो बातें बेसिक बातें बताना चाहूंगा। दोस्तों बेसिक बात यह होती है, जो सरकारी तंत्र में जिस तरह से पैसा खर्च किया जाता है, हर योजना के लिए एक निश्चित रकम दी जाती है। मान लीजिए किसी योजना के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए, किसी राज्य को मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए दिए गए वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए, और उसमें अगर वो 50-50% का रेशियो है तो राज्य सरकार भी 100 करोड़ रुपए लगाएगी, यानी कि 200 करोड़ रुपए की योजना हो गई। सामान्य तौर पर जो नियम होता है वो ये है कि ये जो वृद्धावस्था पेंशन योजना के जो 100 करोड़ रुपए हैं, पहली बात कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें से अगर कुछ धन बच जाएगा तो उसे आप अगले फाइनेंशियल ईयर में खर्च कर लेंगे, ऐसा नहीं है, वो लैप्स हो जाएगा। दूसरी बात कि जो वृद्धावस्था पेंशन योजना का जो पैसा है, यदि बच जाता है, मान लीजिए 100 करोड़ में से आपके पास 20 करोड़ रुपए बच गया, तो अब ऐसा नहीं है कि इस पैसे को आप दूसरी योजना में खर्च कर सके। मान लीजिए कि स्वास्थ्य योजना है और स्वास्थ्य योजना में आपकी जरूरत ज्यादा है, उसमें 20 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप ये 20 करोड़ रुपए उधर ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर लेंगे और कुल योजना खर्च का हिसाब दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। सबके लिए बिल्कुल फिक्स रकम होती है, फिक्स अवधि होती है और उसी दौरान आपको अपना खर्च करना होता है। दोस्तों इसका एक दूसरा पक्ष भी होता है। दूसरा पक्ष यह है कि मान लीजिए कि किसी राज्य ने वृद्धावस्था पेंशन योजना जिसको 100 करोड़ रुपए दिए गए थे, उस पर उसने 80 करोड़ रुपए खर्च किए, तो अब जब नेक्स्ट ईयर उसको जब पैसा दिया जाएगा तो ये जो पिछला उसने खर्च किया है इसको रिव्यू करेंगे कि भाई अच्छा ये राज्य 80 करोड़ ही खर्च कर पा रहा है तो इसको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि अगले साल आपको घटा करके 90 करोड़ कर दिया जाए, और जो राज्य 100 करोड़ खर्च कर चुके हैं वो अपना प्रपोजल भेजेंगे तो उनको 100 करोड़ से ऊपर भी दिया जा सकता है। अगर उन्होंने प्रपोजल भेजा है कि अब उनको 110 करोड़ या 120 करोड़ की जरूरत है तो उनको ज्यादा पैसा मिल सकता है। ऐसी स्थिति में एक बड़ी विचित्र सी चीज होती है, आप अक्सर महसूस करेंगे कि मार्च फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होता है तो फरवरी और मार्च में सरकारी तंत्र बहुत जबरदस्त खरीदारी करेगा, खर्च करेगा, एकदम उनमें चुस्ती आ जाएगी कि भैया सारा का सारा पैसा लैप्स हो जाएगा तो जितना ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकते हो उतना खर्च करो, नहीं तो फिर अगली बार इस मद में पैसा कम मिलेगा। ये तो इसका एक बेसिक पक्ष है दोस्तों। अब ये जो न्यूज थी इससे अब आप इसे जोड़ लीजिए, राज्य खर्च उसी मद में करेंगे जिसके लिए उनको पैसा दिया गया है, अपनी तरफ से उन्हें कोई लिबर्टी नहीं होगी, तो अब केंद्र सरकार ने उस लिबर्टी को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बस आप यूं समझ लीजिए सामान्य तौर पर। अभी जब इसकी डिटेल्स अगर पेपर्स में आई तो हम फिर उस पर बात करेंगे। अब आप कह सकते हैं मित्रों कि अब ये तो छोटी सी बात है सर, तो इसका सिविल सर्विस से क्या संबंध है, क्या लेना देना है। मैं अब उसी पॉइंट पर आ रहा हूं दोस्तों कि इसका सिविल सर्विस से क्या लेना देना है। देखिए आप अगर पूरे के पूरे गवर्नमेंट पॉलिसी को देखिए, हमारी इंडियन पॉलिटी को देखिए या मैनेजमेंट को देखिए, ये तीनों चीजों को ले लीजिए, गवर्नमेंट पॉलिसी ले लीजिए, मैनेजमेंट ले लीजिए और पॉलिटिक्स ले लीजिए, पॉलिटिक्स का मतलब है डेमोक्रेसी को ले लीजिए, राइट। आप देखेंगे कि दो तीन चीजों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग लगभग सभी देशों में। पहली बात कि भारत की अगर हम पॉलिटिक्स को ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन को ले लें, तो वह है संघवाद, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है कि जो स्टेट हैं उनको अब ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, वो केंद्र सरकार के कम से कम नियंत्रण में रहें। क्या आपको उसमें फेडरलिज्म का यह तत्व दिखाई दे रहा है कि कैसे केंद्र सरकार उसे लिबर्टी दे रही है? यहां आपको वो तत्व दिखाई देगा। जो मैंने पॉलिसी की बात कही मित्रों, पॉलिसी से मेरा संबंध था कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल। अब जो नीतियां जो बनाई जा रही हैं या आप प्रशासन में भी देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा व्यावहारिक होने की कोशिश हो रही है कि अब आप देखें कि जरूरत किस तरीके की है, बजाय इसके कि आप केवल कानून और नियमों का पालन ही करते रहें, फिर उन कानून और नियमों के पालन से जो उद्देश्य पूरा होना है वो उद्देश्य पूरा भले ही ना हो, लेकिन हमारे लिए नियम और कानून इम्पोर्टेंट है। अब उद्देश्य ज्यादा इम्पोर्टेंट होता चला रहा है, जिससे हम दूसरी भाषा में अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, क्योंकि जिसको जिम्मेदारी दी गई है उस वो इस बात के प्रति उत्तरदायी भी होगा कि वो जिम्मेदारी पूरा करे। तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जो व्यावहारिकता चाहिए, अगर आप वो व्यावहारिकता उसे प्रदान नहीं करेंगे तो बट नेचुरल है कि जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो वो कह देगा कि मैं क्या करूं। आप देखिए कि आपने ये नियम कानून बना रखे हैं और उस नियम कानून के तहत जो मैं कर सकता था मैंने किया, अगर यही नियम कानून इस तरीके के होते तो शायद मैं अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाता। तो पॉलिसी के तहत मित्रों ये बात आ रही है। तीसरा, जो मैंने मैनेजमेंट की बात कही, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब तो हम बिल्कुल नियो मैनेजमेंट पर एकदम आ गए, एकदम नया से नया जो मैनेजमेंट होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी ने तो उन चीजों को बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया है। तो मैनेजमेंट के तहत यह है कि जो शक्ति का विकेंद्रीकरण लगातार होता चला जा रहा है। अब जो शक्ति है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए आप देखें कि जब डिसीजन मेकिंग की भी बात आती है तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात आती है, मतलब एक ही व्यक्ति सारे निर्णय नहीं लेगा। ध्यान दीजिए कि जब रिजर्व बैंक के गवर्नर अभी हमारे जब राजन साहब थे, उनका जब टर्म पूरा हो रहा था, उस समय एक विवाद छिड़ा था रिजर्व बैंक में कि जो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर जो निर्णय लेते हैं क्यों नहीं एक समूह बना दिया जाए और वो लोग मिलकर के फिर निर्णय लें, है ना। तो ये बड़ी छोटी छोटी और बारीक चीजें हैं जहां से आपको परिवर्तन के तत्व मिलेंगे, शुरुआत मिलेंगे, सूत्र मिलेंगे कि किस तरीके की बात हो रही है, कैसी बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, कौन से दबाव हैं जो इस तरह की बात करने के लिए इनको मजबूर कर रहे हैं। इन सब चीजों पर आपकी जब नजर रहेगी तब आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के डेप्थ में पहुंच पाएंगे। तो मित्रों, आपको ये जो छोटी सी खबर है अधिक धन खर्च करने वाली बात, इसमें आपको यह चीज दिखाई दे रही होगी जो मैंने आपको तीन पॉइंट बताया। और फिर आपको मालूम है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे वो लगातार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, सहकारी संघवाद की बात कर रहे हैं, और वो इस बात को बड़े खुले रूप में कहते भी हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं, लंबे समय तक मैं गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हूं और मुझे मालूम है कि राज्यों की क्या जरूरतें होती हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं और साथ ही उनकी क्या दिक्कतें भी हैं। तो स्वाभाविक है कि अब चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उन समस्याओं को बहुत अच्छे से जानते हैं तो उनके पास एक अवसर है जबकि वो राज्यों की समस्याओं को समझते हुए उसका निराकरण कर सके। तो ये मित्रों दूसरी एक खबर थी। तीसरी खबर की ओर मैं जो आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा वह है एक बड़ी छोटी सी खबर। देखिए, अब मैं खबरों के पीछे जो बड़ी चीजें छिपी हुई हैं थोड़ी सी मैं उन पर बात कर रहा हूं, रेडियो न्यूज को ही सहारा बनाकर। आपने सुना एक छोटी सी खबर है कि पंजाब चुनाव के समय में शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि वो इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेगी और फलाने के साथ होगा, ये खबर आपने छोटी सी सुनी। मित्रों, ये एक छोटी सी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, लेकिन पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं उस दृष्टि से एक बड़ी खबर है। और इससे ठीक पहले आप देख चुके हैं कि जो सिद्धू जी हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे वहां उन्होंने रिजाइन किया और फिर ये अफवाहें चली कि वो शायद आप पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, फिर वो आप पार्टी की जगह उन्होंने शायद आवाज ए पंजाब वो भी आप ही है पार्टी बना ली, राइट। अब पंजाब के चुनाव हो रहे हैं, फिर आप उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल देख रहे हैं कि अभी राहुल गांधी जी हैं वो अपने चुनाव प्रचार के अभियान में लग गए हैं, बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब धीरे धीरे लोग सक्रिय हो रहे हैं। आप इन सब की रणनीतियों में आपको एक चीज दिखाई देगी और वो ये कि वो पार्टी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो लेकिन गठबंधन के बारे में सोच रही है कि हम किसके साथ कॉलिशन करें, किसके साथ गठबंधन करें। मतलब ज्यादातर पार्टियों की अब ये स्थिति हो गई है कि वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं और राज्यों में यह स्थिति हो रही है। आप उस स्टेटमेंट को याद कीजिए जब अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये उन्होंने कहा कि नहीं राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो आए और मिल बैठ करके बात करेंगे, ये किसकी तरफ इशारा है? वो इसी तरफ इशारा है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो जाए, फिर भारतीय जनता पार्टी या और किसी में गठबंधन हो जाए। फिर आपने एक और भी खबर इसी में सुनी है कल के ही रेडियो न्यूज में कि शहाबुद्दीन जब जेल से छूटे तो उन्होंने कह दिया कि नीतीश जी तो जन नेता ही नहीं है। फिर नीतीश जी कह रहे हैं कि नहीं, जो गठबंधन है उसका नेता तो मैं ही हूं। वहां भी आपको गठबंधन दिखाई दे रहा है नीतीश जी की पार्टी में और लालू जी की पार्टी में, और उस गठबंधन के कारण ही नीतीश जी वहां जीत पाए, नहीं तो हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी आ जाती। तो आप इसमें वाच कीजिए कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है, मतलब हम सेंटर में तो गठबंधन सरकार की स्थिति में आ गए, कॉलिशन की स्थिति में आ गए, 89 के बाद ही ये स्थिति बनने लगी है। पहली बार बीजेपी अभी सत्ता में अपने ही दम पर आई है, लेकिन चुनाव से पहले तो उन्होंने भी गठबंधन किया ही था और अभी भी गठबंधन की ही सरकार है, कह लीजिए एक तरीके से, भले ही उनके पास स्पष्ट बहुमत है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि राज्यों में भी अब गठबंधन जोर पकड़ रहा है। ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब पता नहीं आप इसको डेमोक्रेसी की मजबूती कह सकते हैं, डेमोक्रेसी की कमजोरी कह सकते हैं, जो भी आप डिसीजन लेना चाहें, जो भी निष्कर्ष निकालना चाहें, आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो मित्रों, ये एक खबर, इसके पीछे जो पॉलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। एक तो छोटी सी खबर थी मित्रों, उत्तर कोरिया को लेकर के, आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, मैंने पिछले वीक आप लोगों को एक एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड किया था कि उत्तर कोरिया ने जो परमाणु परीक्षण किया है उसको लेकर के दुनिया बहुत परेशान है, क्योंकि उत्तर कोरिया की खबरें आप पढ़ते रहे ना, वहां तानाशाही शासन है, कि वो झपकी ले रहा था सेनापति तो उसको तोप से उड़वा दिया, किसी ने प्रश्न कर दिया तो उसको मरवा दिया। तो उत्तर कोरिया में तानाशाही शासन है और अब वो जो परमाणु परीक्षण किया उससे पूरी दुनिया घबराई हुई, तो आप देख रहे हैं कि सभी कैसे दबाव डाल रहे हैं उसके ऊपर। तो वो एक खबर थी, तानाशाही शासन है, वहां की आर्थिक स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है, लोगों मतलब काफी गरीबी है, लेकिन अब तानाशाह तो जो करना चाहें वो करें, तो वो उत्तर कोरिया के बारे में बस थोड़ी सी जानकारी है जो मैंने आपको दी है। मित्रों, जहां तक अब मैं प्रेस क्लिपिंग्स पर आता हूं, प्रेस क्लिपिंग का सवाल है, कुछ प्रेस क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप इन प्रेस क्लिपिंग्स को देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं है लेकिन अच्छी प्रेस क्लिपिंग्स हैं, सीधे सीधे आपके एग्जाम के काम की प्रेस क्लिपिंग्स इसमें मिलेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं, थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका लाइफ मैनेजमेंट के लिए। दोस्तों, कल संडे का दिन था तो हम लोग एक फिल्म देखने का प्लान बना रहे थे, तो फिक्री अली फिल्म देखने चले गए। उस फिल्म को देखने के पीछे मतलब मेरा जो था वो दो पर्पज थे दोस्तों। एक तो ये था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग देखनी थी, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो चलिए उनकी एक्टिंग देखते हैं। और दूसरा जो पर्पज था वो मैं गोल्फ के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था, उसमें गोल्फर बने हैं वो, कि गोल्फ के टूर्नामेंट कैसे होते हैं, कैसे खेला जाता है, क्या चीजें होती हैं। वैसे तो मैंने कभी गोल्फ देखा नहीं है, गोल्फ के ग्राउंड पर ही देखे हैं, तो मैं कहा चलो कम से कम एक खेल के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो हम लोग गए। अब इस बात पर नहीं आते कि फिल्म कैसी लगी, ठीक ही ठाक थी। दोस्तों, जब मैं फिल्म को देख रहा था तो मुझे एक दो चीजें ऐसी मिली जो मुझे लगा कि आप लोगों से उस पर बात की जा सकती है। आप लोगों में से जिन्होंने फिल्म देखी होगी वो शायद मेरी बात को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और नहीं भी देखी हो तो मैं इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई फर्क ज्यादा न पड़े। उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी मित्रों बहुत ही सामान्य किस्म का व्यक्ति है, अनाथ व्यक्ति था, मतलब अनाथ बालक था, दरगाह पर पड़ा हुआ किसी हिंदू मां को मिल गया तो उस बच्चे को उठा करके ले गई, पाला पोसा और उसने बड़ा किया। अब ये अपना छोटे मोटा व्यापार करने लगा जिसमें उसमें आए कि चड्डी बेचने वाला व्यक्ति वो बना है और इस बस वो बेचता रहता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वो अपनी मां को आई कहता है। और उसके जो जीवन का एकमात्र जो उद्देश्य हो गया है वो ये हो गया है कि वो उसकी आई खुश रहे, उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, वो अच्छा जीवन जिए, क्योंकि वो बड़ा उपकृत महसूस करता है कि एक बिल्कुल लावारिस बच्चा जो पड़ा हुआ था एक औरत उठा करके ले गई और उसने अपने बेटे की तरह उसे पाला पोसा है। तो अपनी मां के प्रति जो जिसने जन्म नहीं दिया केवल पाला है, उस मां के प्रति बहुत ही उपकृत महसूस करता है। ये उसकी इमोशनल ताकत है, ये उसका इमोशनल पक्ष है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। दोस्तों, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, क्रिकेट ऐसा कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं है, जहां कहिए वहां बॉल मार देगा, आखिरी में चार बॉल पर चार छक्के मार के उसने अपने प्रमाण दिए। तो दोस्तों, होता यह है कि एक व्यक्ति जो इसको जानता रहता है उसके मन में आता है कि इसको गोल्फर बनाना चाहिए, इसको गोल्फ का खिलाड़ी बनाना चाहिए। मित्रों उसके पास पहुंचता है कि तुम गोल्फ खेलो तो ये तो बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति है, बिलो पॉवर्टी लाइन तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ निम्न वर्ग में ले लीजिए आप, मध्यम वर्ग में भी नहीं है। तो इनकार करता है कि क्या रखा है उसमें, और मुझे तो पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए वो थोड़ा सा फालतू की वसूली करने वाले गैंग में भी शामिल हो जाता है। मित्रों उस समय जो इसको गोल्फ का ऑफर लेकर के आया था उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, और ये सेकेंड पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको इमोशनल एनर्जी की बात कही, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वो जब ये मना करता रहता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो वो आखिरी में जब वो जाने लगता है तो कहता है कि देखो तुम अब फैसला करो, उसका नाम अली है, कि तुम अब फैसला करो, तुम्हारे सामने दो चीजें हैं, या तो तुम इस स्टिक के लिए हां करो, स्टिक का मतलब जिससे गोल्फ खेला जाता है, बॉल को हिट किया जाता है, या फिर तुम सीधे सीधे जाकर के अपने पुराने काम में लग जाओ, और याद रखो ये फैसला तुम्हारे हाथ में है और इस एक फैसले से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मित्रों कि इस एक फैसले से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, ये मैं तुमको बता देता हूं, मतलब इसको उतनी आसानी से मत लो। वो कहने का मतलब यही था, कहता नहीं है। मित्रों हमारी जिंदगी में जो फैसले होते हैं याद रखिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ज्यादा मायने क्या, सब कुछ जो मायने रखते हैं वो हमारे फैसले ही होते हैं। हमारे जैसे फैसले होंगे उसी तरह की हमारी जिंदगियां होंगी, और याद रखिए कि बाद में हम पछताते हैं कि हमने गलत फैसला ले लिया। गलत फैसले नहीं लेते हैं आप वही फैसले लेते हैं जो उस समय आप ले सकते थे। मैं तो कभी कभी मित्रों, मेरी एक किताब भी है सही निर्णय कैसे लें, मैंने उसमें कई जो हमारे माइथोलॉजी के, महाभारत के, रामचरितमानस के और दूसरी कथाओं के जो फैसले हैं उनकी एनालिसिस करके बताया है कि उन्होंने ये फैसले किस तरीके से लिए हैं। तो आप उस परिस्थिति में वही फैसला ले सकते थे। अगर दोबारा आपको फिर से जन्म दे दिया जाए और सारी परिस्थितियां बना दी जाए तो फिर से आप वही फैसला लेंगे, क्योंकि वो जो आपका फैसला आ रहा है वो आपके अवचेतन मन से आ रहा है, आपके अंदर से आ रहा है, और वो स्टिक पकड़ने का फैसला लेता है, हाथ बढ़ा देता है और स्टिक अपने हाथ में ले लेता है, और वास्तव में मित्रों उसकी जिंदगी बदल जाती है, वो चैंपियन बन जाता है, जिंदगी ही बदल जाती है, वो लेजेंडरी बन जाता है। लेकिन मित्रों यहां मैं एक और पॉइंट आपसे कहना चाहूंगा कि क्या फैसले ले लेने से ही सफलता मिल जाती है? उस फिल्म में दिखाया है कि फिर आपको उस फैसले पर कैसे फोकस्ड होना पड़ता है, फोकस्ड होना पड़ता है, यानी कि आपने फैसला ले लिया और आप सफल हो गए, क्योंकि बाद में जो हम दोष देते हैं कि हमने गलत फैसला लिया, उस दोष के पीछे कारण यह होता है मित्रों, जो हम दोष दे रहे हैं कि हमने फैसला तो ले लिया लेकिन उस फैसले पर जो अमल होना चाहिए था वो हमने नहीं किया, जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया। तो फिर फैसला ले लेना ही सब कुछ थोड़ी है, लेकिन अमल आप तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आप कोई फैसला नहीं करेंगे। मित्रों इस आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं स्पेशली जो हमारे फिफ्थ बैच के जो स्टूडेंट आने वाले हैं उनको स्पेशली डेडिकेट करना चाहूंगा। दोस्तों बहुत से लोगों ने एकेडमी में आने का फैसला किया, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, आप सब आ रहे हैं, आने के बाद फिर आप लोग अपने अपने तरीके से मूल्यांकन करेंगे कि आपका यहां आना सही हुआ या सही नहीं हुआ। बहुत लोगों ने आने की बात कही, कुछ लोग उनमें ऐसे भी हैं जो बाद में नहीं आ रहे हैं, मतलब हर तरह के लोग इसमें हैं। कुछ लोगों ने यह फैसला ही नहीं किया कि एकेडमी जाना भी चाहिए, मतलब मैं उस सही और गलत की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो फैसलों के आपको रूप दिखा रहा हूं। मित्रों फाइनली आप में से जो लोग आ रहे हैं याद रखिए कि आप ये मत समझ करके आइए कि आपने एक निर्णय ले लिया है और अब इस निर्णय को सही साबित करने की जिम्मेदारी सिर्फ एकेडमी पर है, आपको फोकस होना पड़ेगा। एकेडमी ने जो आपसे वायदे किए हैं जिस तरीके से जितना वो कर सकती है बेहतर तरीके से कर सकती है वो करेगी, क्योंकि इसमें एकेडमी की भी अपने आत्मसंतोष की बात है, उसको भी इसमें खुशी महसूस होती है जब आप लोगों के अच्छे मेल आते हैं, जब प्रशंसा के भाव आते हैं, जब आप लोगों को सफलताएं मिलती हैं, तो एकेडमी के लिए यही सब कुछ है। लेकिन याद रखिए कि अगर आप फोकस्ड नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों ने महसूस किया, हालांकि ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक भी संख्या क्यों हो। फोकस्ड होने का मतलब होता है कि आप किसी भी काम में अगर लगे हुए हैं तो उसका पर्पस क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हैं पर्पस क्या है उसको समझना। घंटे बिताना पर्पस नहीं है। आप फिल्म देखने गए हैं, इंटरटेनमेंट का पर्पस है तो आप इंटरटेनमेंट कीजिए। मैंने कहा कि मैं फ्रिकी अली फिल्म देखने गया था कि मैं गोल्फ के बारे में जानूंगा, तो मैं उसको एंजॉय कर रहा था। मेरा वो गोल्फ के बारे में जानना मेरा पर्पस था, मुझे साहब उनका एक्टिंग देखना नवाजुद्दीन का, ये मेरा पर्पस था, इंटरटेनमेंट नहीं था, तो मुझे निराशा नहीं हुई। यहां जो आप आ रहे हैं, याद रखिए आप एक पर्पस के साथ आ रहे हैं। आपके दो पर्पस हैं, यह जानना कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जाती है और अकॉर्डिंगली अपने आप को परिवर्तित करना, ये आपके दो पर्पस हैं। यहां आपका तीसरा पर्पस नहीं है। तीसरा पर्पस का मतलब है कि कितनी मेहनत कराई जा रही है, किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरह का की व्यवस्थाएं हैं। ये जो दुनिया भर की जो दूसरी चीजें हैं, आप ये मत समझिए कि ये चीजें नहीं होंगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन सवाल ये है कि इन चीजों पर आपका फोकस है या पढ़ाई आपके फोकस में है। जिस पर्पस से आप आए हैं वो आपका फोकस है। फ्रिकी अली में यही दिखाया गया है कि वो अपनी चीजों पर फोकस्ड हो जाता है, और जब कभी वो फोकस से जरा गड़बड़ होता है तो उसको करेक्ट भी कर दिया जाता है, कोई ऐसी घटना घटती है जो उसे करेक्ट कर देती है, और इसके बाद वो अपने उद्देश्य को पा लेता है। हर कोई अपने उद्देश्य को पा सकता है दोस्तों, केवल फिफ्थ बैच के स्टूडेंट्स के लिए ही मेरा अब ये मैसेज नहीं है। जिंदगी में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं अगर आप फोकस्ड हो गए हैं तो वो चीज आपको मिलेगी। और जिस दिन ये सब नहीं होने लगेगा दोस्तों, प्रकृति का सिद्धांत उलट जाएगा तो दुनिया कैसे चलेगी आप बताइए ना। तो मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आता हूं ईमेल पर। आज मित्रों बहुत मेरे पास नाम है फिफ्थ बैच के स्टूडेंट के जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर भेजे हैं, तो पहले मैं उनके नाम और मोबाइल नंबर पढ़ देता हूं। मेरे पास पहला नाम है ओम प्रकाश जाट का, जो जयपुर और अजमेर के स्टूडेंट के बारे में कह रहे हैं कि वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओम प्रकाश का मोबाइल नंबर है दोस्तों 9599445530। नेक्स्ट स्टूडेंट है रविशंकर, जो मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली से आ रहे हैं। रविशंकर का मोबाइल नंबर है 8860321264। नेक्स्ट स्टूडेंट है लाल चंद राव, आप भी जयपुर से आ रहे हैं। लाल चंद का मोबाइल नंबर है 7297865065। अगले विद्यार्थी हैं वेदपाल जो करनाल हरियाणा से आ रहे हैं। वेदपाल का मोबाइल नंबर है 9467555754। अगले स्टूडेंट हैं दोस्तों प्रियम दत्ता, जो नादिया पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, कोलकाता से। इनका मोबाइल नंबर है प्रियम का 8016281688। नेक्स्ट स्टूडेंट हैं कलीम अहमद, जो सवाई माधोपुर राजस्थान से आ रहे हैं। कलीम अहमद का नंबर है 9549142756। अगले स्टूडेंट हैं अखंडेश ओझा, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। अखंडेश का मोबाइल नंबर है 7800765001। नेक्स्ट स्टूडेंट हैं दोस्तों कमलेश कुमार कमल, जो नवादा से आ रहे हैं। कमलेश का नंबर है 8521490315। नेक्स्ट स्टूडेंट हैं दोस्तों चंद्रभान पाल, आप इलाहाबाद से आ रहे हैं। चंद्रभान पाल का नंबर है 9415606923। और इस लिस्ट में आखिरी स्टूडेंट हैं प्रभात कुमार, जो मेरठ से आ रहे हैं। प्रभात का नंबर है 8439298735। तो मित्रों मैं ईमेल लिखने वाले अपने सभी साथियों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और उनमें से कुछ मित्रों के नाम हैं निखिल गौतम, पूनम सोनवानी रायपुर से, शशिकला चौहान मुंबई से, मोहिनी रावत लखनऊ से, नरेंद्र सालवी उदयपुर राजस्थान से, किशन मेवादा पालिताना गुजरात से, भरत गुप्ता धनंजय तिवारी लखनऊ से और पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।